अध्याय 6। मैं यहां हूं, मुझे भेज। रात्रि के समय चोर के निराहट आगमन की भांति जगत का अंत अदृश्य रूप में हमारे ऊपर चला आ रहा है। परमेश्वर करे कि हम दूसरों की भांति सोते न रहें, परंतु जागते रहें और संयमी रहें। सत्य की अविलंब शान के साथ जय होने वाली है, और वे सब जो परमेश्वर के संग काम करने वाले बनना चाहते हैं उसके संग संग विजय पाएंगे। समय थोड़ा, रात्रि शीघ्र आने वाली है जिसमें कोई काम न कर सकेगा। वे जो वर्तमान सच्चाई में आनंदित हैं, वे जल्दी से इस सच्चाई को दूसरों को भी पहुंचावे। परमेश्वर प्रश्न पूछ रहा है, मैं किसको भेजूं? जो सत्य के खातिर बलिदान करना चाहते हैं वे उत्तर दें, प्रभु मैं यहां हूं, मुझे भेज। हमने सुसमाचार के काम का, जिसे परमेश्वर चाहता है कि हम अपने पड़ोसियों तथा मित्रों के बीच में करें, केवल थोड़ा सा भाग किया है। हमारे देश के प्रत्येक नगर में ऐसे लोग हैं जो सच्चाई को नहीं जानते, और समुद्र पार की दुनिया में अनेक नए क्षेत्र हैं जहां भूमि को जोतना और उसमें बीज बोना है। हम संकट के समय के बिल्कुल तट पर हैं, और कठिनाइयां जिनका स्वप्न में भी ख्याल नहीं हो सकता था हमारे सामने हैं। नीचे से एक शक्ति लोगों का नेतृत्व कर रही है। मानव प्राणियों ने शैतानी कारिंदों के साथ संधि कर ली है कि परमेश्वर की व्यवस्था को निरर्थक करें। इस संसार के निवासी नूह के दिनों के निवासियों की भांति बनते जा रहे हैं, जिनको जल प्रलय बहा ले गया, और सदोम के निवासियों की भांति होते जा रहे हैं जो आकाश की आग से भस्म किए गए। लोगों का ध्यान अनंत सत्य से हटाए रखें। शैतान की शक्तियां काम पर तत्पर हैं। शत्रु स्थायी सत्यता से लोगों के मन को विचलित करने के लिए तन्मय लगा है। सांसारिक कारोबार, खेल, सामयिक फैशन, ये चीजें पुरुष व स्त्रियों के ध्यान को आकर्षित किए रहती हैं। मन बहलाव की बातें और अनुपयोगी पुस्तक पढ़ने से बुद्धि खराब हो जाती है। उस चौड़ी सड़क पर जो अनंत विनाश को पहुंचाती है, एक लंबा जलूस यात्रा कर रहा है। अत्याचार, मद्यपा के उत्सव और नशेबाजी से भरी दुनिया कलीसिया के मन को फेर रही है। परमेश्वर की व्यवस्था, धार्मिकता का ईश्वरीय माप, अनुपयोगी घोषित की गई है। अंत के समय से संबंधित भविष्यवाणियों के पूर्ण होने तक क्या हम ठहरे रहें और तब तक उनके विषय में कुछ न कहें? तब हमारी बातों का क्या मूल्य होगा? जब तक परमेश्वर का कोप अपराधी पर न भड़क उठे, क्या हम तब तक ठहरे रहें और कुछ न कहें कि किस प्रकार उससे बच सकते हैं? परमेश्वर के वचन में हमारा विश्वास किधर है? क्या हम पहले से बतलाई बातों को पूरा होते देखें तब विश्वास लाएं कि परमेश्वर ने क्या कहा था? प्रकाश की स्पष्ट पृथक किरणें हम तक पहुंची हैं और बतला रही हैं कि परमेश्वर का भयंकर दिन निकट है, बल्कि द्वार पर है। समय अधिक बीत जाने से पहले आइए हम पढ़ें और बूझें। आपकी योग्यता किसी आवश्यकता को पूर्ण करेगी। परमेश्वर की भारी योजना में प्रत्येक के लिए काम करने को है। जिसकी जरूरत नहीं होती उसका वरदान भी नहीं होता। मान लो कि योग्यता छोटी सी है, फिर भी परमेश्वर के पास उसके लिए एक स्थान है, और वही योग्यता यदि ईमानदारी के साथ उपयोग में लाई जाए तो वह यथोचित कार्य करेगी जिसे परमेश्वर चाहता है। गरीब झोंपड़ी के निवासी की योग्यता की आवश्यकता है कि घर घर जाकर प्रचार करे। वह इस काम में अधिक योग्यता रखने वालों से अधिक सफलता प्राप्त कर सकता है। जब मनुष्य अपनी शक्तियों को परमेश्वर की आज्ञानुसार उपयोग करते हैं तो उनकी योग्यता में उन्नति और दक्षता में वृद्धि होगी, और उनको खोए हुओं को ढूंढने में परमेश्वर की ओर से बुद्धि प्राप्त होगी। परंतु जब कलीसिया के सदस्य ईश्वर की ओर से जो दूसरों के प्रति दायित्व दिया गया उसके प्रति उदासीनता प्रकट करें तो स्वर्ग के खजाने को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जब अपने को मसीही कबूल करने वाले अंधकार में पड़े हुओं को प्रकाशित करने के दायित्व को महसूस नहीं करते, जब वे अनुग्रह और ज्ञान देना बंद कर देते हैं तो उनका विवेक कम हो जाता है। वे स्वर्गीय वरदान के सद्गुणों के महत्व को खो बैठते हैं और स्वयं उसका मूल्यांकन न कर सकने के कारण दूसरों के पास इसके महत्व को बतलाने का जो दायित्व है उसे अनुभव नहीं कर पाते हैं। विभिन्न मोहल्लों में हम बड़ी बड़ी कलीसियाओं को इकट्ठा होते देखते हैं। उनके सदस्यों ने सत्य का ज्ञान प्राप्त किया है उनमें से बहुत से जीवन वचन को सुनकर दूसरों को प्रकाश दिए बिना संतुष्ट रह जाते हैं। वे काम की उन्नति के लिए कोई दायित्व महसूस नहीं करते, न आत्माओं के त्राण में कोई उत्साह प्रकट करते हैं। वे सांसारिक बातों में बहुत जोशीले हैं, परंतु अपने धर्म को व्यवसाय में उपयोग नहीं लाते। वे कहते हैं, धर्म तो धर्म है और व्यवसाय व्यवसाय है। वे विश्वास करते हैं कि प्रत्येक का विशेष स्थान है, परंतु कहते हैं उनको पृथक हो रहना चाहिए। अवसरों की लापरवाही करने और विशेषाधिकारों का अनुचित उपयोग करने से इन कलीसियाओं के सदस्य हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में नहीं बढ़ रहे हैं। दूसरा पत्रस 3:15। इसलिए वे विश्वास में दुर्बल, ज्ञान में हीन और अनुभव में नन्हे बालक हैं। सत्य में उनकी जड़ें मजबूत नहीं हैं। यदि वे इसी प्रकार रहें तो अंतिम दिनों के धोखों से वे सचमुच धोखा खाएंगे, क्योंकि उनको कोई आत्मिक दृष्टि प्राप्त न होगी जिससे सत्य व असत्य में अंतर कर सकें। परमेश्वर की इच्छा पवित्रात्मा का दान देने की है। जब किसी स्थान में जहां हमारे लोग रहते हैं अनुभवी कर्मचारी कोई विशेष धार्मिक सभा करते हैं, तो उस क्षेत्र के विश्वासियों के ऊपर परमेश्वर के लिए काम करने की राह निकालने की गंभीर जिम्मेदारी आ पड़ती है। उन्हें अपने हृदयों की प्रार्थना के साथ छानबीन करनी चाहिए और सम्राट के राजमार्ग को साफ रखना चाहिए और प्रत्येक पाप को जो उन्हें परमेश्वर के संग और अपने भाइयों के संग मिलकर काम करने से रोकता है दूर करना चाहिए। रात के दर्शनों में परमेश्वर के लोगों के बीच हुए सुधार आंदोलन के प्रदर्शन मेरे सामने से गुजरे। कितने तो परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे, रोगी चंगे किए जा रहे थे और अन्य आश्चर्य कर्म किए जा रहे थे। उनके बीच मध्यस्थता की भावना दिखाई दे रही थी, जैसी पेंतिकोष्ट के दिन से पहले प्रत्यक्ष थी। सैकड़ों और हजारों परिवारों से मुलाकात करते और इनके सामने परमेश्वर का वचन खोलते हुए देखे गए। पवित्र आत्मा की शक्ति द्वारा अनेक हृदय दोषी ठहराए गए और सच्चे मन फिराव की भावना प्रकट हुई। सच्चाई की घोषणा के लिए चारों ओर द्वार खुल गए। स्वर्गीय प्रभाव से सारा संसार प्रकाशमग्न प्रतीत हुआ। परमेश्वर के सच्चे और विनम्र लोगों को बड़ी आशीषें प्राप्त हुईं। मैंने धन्यवाद और प्रशंसा की आवाजें सुनी और वह एक धर्म सुधार की भांति प्रतीत हुआ, जैसा हमने 1844 में देखा था। परमेश्वर पवित्र आत्मा के वरदान द्वारा अपने लोगों को ताजा दम करना चाहता है और उनको प्यार में नए सिरे से बपतिस्मा देना चाहता है। कलीसिया में पवित्र आत्मा के अभाव की कोई आवश्यकता नहीं है। मसीह के स्वर्गारोहण के बाद पवित्र आत्मा बाट जोहने, प्रार्थना करने तथा विश्वास लाने वाले शिष्यों पर भरपूर की महिमा से प्रकाशमान होगी। जो लोग सत्य के द्वारा पवित्र किए गए हैं उनसे एक पवित्र प्रभाव संसार तक पहुंचेगा। पृथ्वी अनुग्रह के वायुमंडल से घिर जाएगी। पवित्र आत्मा मानव हृदयों पर प्रभाव डालेगा और परमेश्वर की बातों को लेकर मनुष्यों को दिखलाएगा। जो लोग सचमुच परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं उन सब के लिए परमेश्वर एक भारी काम करने को राजी है। यदि कलीसिया के अवैतनिक सदस्यों में उस काम को करने की जागृति पैदा हो जिसे वे कर सकते हैं, अर्थात युद्ध में अपने खर्चे से जाए और प्रत्येक यह देखे कि वह यीशु के लिए आत्माओं को जीतने में कितना कार्य कर सकता है, तो हम देखेंगे कि बहुत से लोग उस रोशनी के अनुसार चलेंगे जो इन चंद शब्दों में दी गई हैं, यूहन्ना 18:8। तो हम सचमुच परमेश्वर के उद्धार को देखेंगे। अद्भुत पुनर्जीवन का अनुभव होगा, पापियों का हृदय बदल जाएगा और बहुत से लोग कलीसिया में शामिल हो जाएंगे। जब हम अपना हृदय मसीह के संयोग में लाते हैं और अपने जीवन को उसके काम के अनुकूल बनाते हैं, तो वह आत्मा जो पेंतिकोष्ट के दिन शिष्यों पर उतरा था हम पर भी उतरेगा। विलंब में खतरा। रात के दर्शनों के दरमियान एक प्रभावशाली दृश्य मेरे सामने से गुजरा। मैंने आग का एक भारी गोला कुछ सुंदर हवेलियों के बीच पड़ते देखा, जिसके कारण वे तुरंत नाश हो गईं। मैंने किसी को कहते सुना, हम जानते तो थे कि परमेश्वर का कोप पृथ्वी पर भड़केगा, परंतु ये किसको मालूम था कि इतना शीघ्र भड़क उठेगा। दूसरों ने दुख भरी आवाज से कहा, आपको तो मालूम था फिर उसको क्यों नहीं बतलाया? हमको तो मालूम भी न था। चारों ओर मैंने ऐसी निंदा के शब्द सुने, मैं बड़ी परेशानी में उठी, फिर सो गई और ऐसा प्रतीत हुआ कि मैं एक बड़े सम्मेलन में है। एक अधिकारी किसी सभा में व्याख्यान दे रहा था जिसके सामने जगत का नक्शा फैला हुआ था। उसने कहा कि नक्शा अंगूरी बाग का है जिसको जोतना चाहिए। जब प्रकाश स्वर्ग से किसी व्यक्ति पर चमकता है तो उसका कर्तव्य है कि वह उस प्रकाश को दूसरों पर चमकावे। अनेक जगहों में बत्ती जलनी चाहिए थी और इन बत्तियों से और बत्तियां जलनी चाहिए थीं। ये शब्द दोहराए गए, तुम पृथ्वी के नमक हो। परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। मत्ती 5:13-16। प्रत्येक दिन जो गुजर जाता है हमें अंत के निकट लाता है। क्या वह हमें परमेश्वर के भी निकट लाता है? क्या हम जागते हुए प्रार्थना करते हैं? जिनकी संगति में हम दिन प्रतिदिन रहते उनको हमारी सहायता और मार्गदर्शक की आवश्यकता है। शायद उनकी मानसिक दशा ऐसी है कि पवित्र आत्मा की ओर से एक सामयिक शब्द सोने पर सुहागा और बहते हुए को तिनके का सहारा जैसा काम करे। शायद इनमें से कुछ लोग ऐसे स्थान में हों जहां हम उन तक कभी पहुंच न सकें। इन सहयात्रियों पर हमारा क्या प्रभाव पड़ रहा है? उनको मसीह के लिए जीतने का क्या प्रयत्न कर रहे हैं? जब स्वर्गदूत चारों हवाओं को थामे हुए हैं तो हमें अपनी समस्त योग्यता से काम करना चाहिए। हमें अपना संदेश अविलंब पेश करना चाहिए। हमें स्वर्ग मंडल को और इस अधर्म युग के मनुष्यों को प्रमाण देना है कि हमारा धर्म एक ऐसा विश्वास और सामर्थ्य है जिसका कर्ता मसीह है और उसका वचन ईश्वरीय वाणी है। मानव जाति का भार तराजू में है। वे या तो परमेश्वर की प्रजा बनेगी या शैतान की तानाशाही की प्रजा बनेगी। सबको उस आशा को थामे रहना चाहिए जो उसके सामने सुसमाचार में रखी गई है। पर बिना उपदेशक के वे क्यों कर सुन सकते हैं? मानव परिवार को शिष्टाचार की नवीनता व चाल चलन की तैयारी की आवश्यकता है कि परमेश्वर की उपस्थिति में खरा खड़ा रह सके। सैद्धांतिक गलतियों के कारण कुछ लोग नाश होने को हैं, और ऐसा अनुमान किया जाता है कि यह गलतियां सुसमाचार का विरति है। कौन अपने को पूर्ण रीति से समर्पण करेगा कि परमेश्वर के संग काम करने वाला बने? हमारी मंडली के अधिकांश लोग आज अपने अपराधों और पापों में मुर्दा हैं। वे कब्जों पर घूमने वाले दरवाजे की तरह आते जाते हैं। वर्षों से वे संतोष के साथ गंभीरतम आत्मा उभारने वाले सत्यों को सुनते आ रहे हैं, परंतु उन्हें व्यवहार में कभी नहीं लाए। इसलिए वे सत्य की अनमोलता के प्रति बेसुध हैं। चेतावनी व झिड़की की उभारने वाली साक्षियां उनको पश्चाताप की ओर नहीं जगाते। विश्वास द्वार धर्मी ठहरना तथा मसीह की धार्मिकता के मधुर राग जो परमेश्वर की ओर से मानव होंठों द्वारा निकलती हैं, उनके प्रत्युत्तर में उनके मुंह से धन्यवाद व प्यार की कोई आवाज नहीं निकलतो। यद्यपि स्वर्गीय सौदागर उनके सामने विश्वास और प्रेम के अनमोल रत्नों को खोलकर रख देता है, यद्यपि वह नियंत्रण देता है कि वे उससे मसामने विश्वास आग में तपाया हुआ सोना खरीदें और उजाला वस्त्र की उसे पहने और आंखों में लगाने का अंजन ले कि देखने लगे, तो भी वे अपने मन को उसके विरुद्ध पत्थर कर लेते और अपने गुनगुनेपन को प्रेम और उत्साह से बदलने में असफल रहते हैं। वे इकरार तो करते हैं, परंतु भक्ति की शक्ति का इकरार करती हैं। यदि वे इसी दशा में पड़े रहेंगे तो परमेश्वर उनको अस्वीकार कर देगा। वे अपने को उसके परिवार के सदस्य बनने के अयोग्य ठहरा रहे हैं। कलीसिया के सदस्यों को स्मरण रखना चाहिए कि उनके नाम कलीसिया के रजिस्टर में दर्ज होने से ही उनका त्राण न होगा। उसको अपने को परमेश्वर के प्रगट योग्य दिखलाना चाहिए, ऐसे काम करने वाले जो लजाने न पाए। उनको दिन प्रतिदिन अपने चाल चलन मसीह के आदेशानुसार बनाना चाहिए। उनको निरंतर उसमें विश्वास का विकास करते हुए बना रहना चाहिए। इस प्रकार वे मसीह में पुरुष तथा स्त्रियों के पूरे डील डॉल तक बढ़ेंगे, अर्थात स्वस्थ हंसमुख कृतज्ञ मसीही होंगे, और परमेश्वर उनका नेतृत्व प्रकाश की ओर करेगा। यदि उनका अनुभव इस प्रकार का न हो तो उनकी गिनती उन लोगों में होगी जिनमें मुंह से एक दिन फूट फूट कर रोने व हाय हाय की आवाजें निकलेंगी। कटनी का समय बीत गया, फल तोड़ने की ऋतु भी बीत गई और हमारा उद्धार नहीं हुआ। मैं शरण लेने क्यों गढ़ की ओर नहीं भागा? मैंने अपने आत्मिक उद्धार को क्यों तुच्छ जाना और अनुग्रह के आत्मा के विरुद्ध क्यों कार्यवाही की? भाइयों और बहनों, आप जो सत्य पर देर से विश्वास रखने का दावा करते हैं, मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से पूछना चाहती हूं कि क्या आपके व्यवहार उस प्रकाश विशेषाधिकार और अवसरों के अनुकूल हैं जो आपको स्वर्ग की ओर से प्रदान हुए हैं? ये गंभीर प्रश्न है। धार्मिकता का सूर्य कलीसिया पर उदय हो चुका है। अब कलीसिया का कर्तव्य है कि चमके। प्रत्येक प्राणी का अधिकार है कि वह आगे बढ़े। जो मसीह से संबंध रखते हैं वे अनुग्रह में और परमेश्वर के पुत्र के ज्ञान में पुरुष व स्त्रियों के पूरे डील डॉल तक उन्नति करेंगे। यदि लोग सच्चाई पर दावा रखते हुए अपनी सारी योग्यता और अवसरों को सीखने और कार्य करने में लगाते तो वे मसीह में मजबूत हो जाते। जो कुछ भी उनका व्यवसाय हो, चाहे वे कृषक हों या शिल्पकार या शिक्षक हों या चरवाहे, यदि उन्होंने अपने को पूर्णतया परमेश्वर को अर्पण कर दिया होता तो अब तक वे स्वर्गीय स्वामी के लिए कुशल कर्मचारी बन गए होते। कर्मचारी कलीसिया के सदस्यों का प्रशिक्षण करें। ये प्रत्यक्ष है कि जितने व्याख्यान दिए गए उन्होंने आत्मत्याग कर्मचारियों के बड़े समुदाय का विकास नहीं किया है। इस विषय को ऐसा समझना चाहिए जिसमें अति गंभीर परिणाम सम्मिलित हैं। हमारा भावी अनंत जीवन है। मंडलियां दुर्बल होती जा रही हैं क्योंकि उन्होंने प्रकाश फैलाने में अपनी योग्यता का उपयोग नहीं किया। आदेशों को सावधानी के साथ देना चाहिए जो मसीह की ओर ऐसे पाठों की भांति कार्य करेंगे कि सब के सब अपने प्रकाश का व्यवहारिक उपयोग कर सकें। जिनके पास मंडलियों की देखरेख का भार है उन्हें योग्य सदस्यों को चुनकर ऊपर जिम्मेदारी डालनी चाहिए। साथ ही साथ उन्हें आदेश देना चाहिए कि दूसरों की सेवा उत्तम रीति से कैसे कर सकें और आशीष दे सकें। कारीगर, वकील, सौदागर, हर प्रकार के व्यवसाय व पेशे के लोग यथाक्रम शिक्षा प्राप्त करते हैं ताकि वे अपने कारोबार में निपुण हो जाएं। क्या मसीह के शिष्य, जबकि प्रगट में उसके सेवा कार्य में संलग्न हैं, उन तौर तरीकों से अनभिज्ञ रहें जिन्हें उपयोग में लाना चाहिए? अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए धैर्यपूर्ण कार्य प्रत्येक सांसारिक विषय से श्रेष्ठ है। लोगों का यीशु की ओर नेतृत्व करने के हेतु मानव प्रकृति का ज्ञान और मानव मस्तिष्क का अध्ययन होना परमावश्यक है कि सत्य के इस गूढ़ विषय को लेकर किस प्रकार पुरुष स्त्रियों तक पहुंचा जाए। ज्यों ही कलीसिया का संस्थान हो जाए, धर्माध्यक्ष सदस्यों को कार्य से जुटाए। उन्हें निस्संदेह यह सिखलाना पड़ेगा कि किस प्रकार सफलता से कार्य करना चाहिए। धर्माध्यक्ष को अपना अधिकांश समय उपदेश देने की अपेक्षा प्रशिक्षण में लगाना चाहिए। वो लोगों को सिखलावे कि वे उस ज्ञान को जिसे उन्होंने प्राप्त किया है दूसरों तक किस प्रकार पहुंचावे। नए चेलों को शिक्षण देना चाहिए कि वे अधिक अनुभवी कर्मचारियों से परामर्श लिया करें, और ये भी बतलाना चाहिए कि वे धर्माध्यक्ष को परमेश्वर का स्थान न दें। शिक्षक गण लोगों के बीच काम करने के हेतु नेतृत्व करें, तब दूसरे लोग जो उनके संग संग काम कर रहे हैं उनके नमूने को पकड़ेंगे। एक उदाहरण अनेक सिद्धांतों के मूल्य से कहीं बढ़कर हैं। जिनके ऊपर कलीसिया की देखरेख का भार है उनको चाहिए कि ऐसी युक्ति निकालें जिससे कलीसिया के प्रत्येक सदस्य को परमेश्वर के कार्य में काम करने का कुछ अवसर प्राप्त हो। प्राचीन काल में ऐसा नहीं किया गया, ऐसी योजनाओं का पूर्णतया पालन नहीं हो सका जिनसे सबकी योग्यता सेवा कार्य में बनती जा सके। केवल थोड़े ही लोग हैं जो महसूस करते हैं कि इसके कारण कितना नुकसान उठाना पड़ा है। प्रत्येक कलीसिया में विशेष योग्यता है जिसे यथा योग्य परिश्रम द्वारा विकसित करके इस कार्य में बड़ी मदद हो सकती है। कर्मचारियों को संलग्न रखने के लिए सुव्यवस्थित योजना का निर्माण होना चाहिए कि वे हमारी छोटी बड़ी मंडलियों में जाकर सदस्यों को सिखलाएं कि मंडली के निर्माण तथा अविश्वासियों के हितार्थ किस प्रकार परिश्रम करना चाहिए। प्रशिक्षण की परम आवश्यकता है। जो काम इस समय के लिए है उसको करने के लिए प्रत्येक को अपने हृदय तथा मन को शिक्षित बनाना चाहिए और जिस कार्य के लिए वे उपयुक्त हों उसी में अपने को योग्य बनावें। जिस बात की इस समय हमारी कलीसिया के निर्माण में आवश्यकता है वो बुद्धिमान कर्मचारियों द्वारा कलीसिया के बीच योग्यता को पहचानने तथा उसका विकास करने को उत्तम कार्य है। ऐसी योग्यता जो स्वामी के सेवा कार्य के लिए शिक्षित की जा सके। जो लोग मुलाकात करने का परिश्रम करते हैं उनको भाइयों और बहनों को धार्मिक कार्य के व्यावहारिक ढंग पर आदेश देने चाहिए। युवकों के प्रशिक्षण के निमित्त एक क्लास खोलनी चाहिए। युवकों व युवतियों को घर ही पर अपने पड़ोसी में तथा समुदाय में कर्मचारी बनने का शिक्षण देना चाहिए। स्वर्गीय दूत बड़ी देर से मानव कर्मचारियों कलीसिया के सदस्यों की बाट देख रहे हैं कि इस भारी काम के किए जाने में सहयोग दें। वे आपकी बाट देख रहे हैं। क्षेत्र इतना विस्तृत, नक्शा इतना बड़ा है कि प्रत्येक पवित्र जन ईश्वरीय शक्ति के कार्यकर्ता होने के नाते से सेवा कार्य में खप सकेगा। राजमार्गों पर जो आमंत्रण दिए जाने को हैं उसका उन सबों को भी, अर्थात लोगों के शिक्षकों तथा नेताओं को, जो संसार के काम में प्रमुख हिस्सा रखते हैं, प्रचार किया जाना चाहिए। जो लोग जनता की सेवा करने में भारी जिम्मेदारी उठाते हैं, हकीम, शिक्षक, वकील तथा न्यायी, सरकारी हाकिम तथा व्यावसायिक लोगों को भी एक स्पष्ट संदेश देना चाहिए। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राणों की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, और मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? मरकुस 8:36-33। हम विसरे हुए गरीबों के विषय में बहुत वार्तालाप करते अथवा लिखते हैं, क्या भूले हुए धनवानों की ओर भी कुछ ध्यान न देना चाहिए? बहुत से इन लोगों के पास जाना व्यर्थ समझते हैं और उनकी आंखों को खोलने के लिए कुछ नहीं करते। जिनकी आंखें शैतान की शक्ति द्वारा अंधी की गई हैं अथवा चुधिया गई हैं और जो अनंत जीवन की ओर से हाथ धो बैठे हैं। हजारों धनवान चेतावनी पाए बिना अपनी कब्रों में चले गए हैं, क्योंकि दिखावट के अनुसार उनका विचार किया गया और व्यर्थ व्यक्ति समझकर छोड़ दिए गए। वे लापरवाह ही क्यों ना दिखाई दें, परंतु मुझ पर प्रकट किया गया कि इस श्रेणी के बहुत से लोग त्राण के लिए चिंतित हैं। हजारों धनवान पुरुष हैं जो आत्मिक भोजन के बिना भूखों मर रहे हैं। बहुत से लोग जो सरकारी पदों पर हैं किसी ऐसी वस्तु की आवश्यकता महसूस करते हैं जो उसके पास है नहीं। उनमें से केवल थोड़े से ही लोग गिरजे जाते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि उनको कोई लाभ तो होता नहीं। जो व्याख्यान वे सुनते हैं वो उनके हृदय को स्पर्श नहीं करते। क्या हम उनकी खातिर व्यक्तिगत परिश्रम न करें? शायद कोई ये प्रश्न करे, क्या हम उनके पास पर्चा पुस्तिका के द्वारा नहीं पहुंच सकते? परंतु अनेक लोग हैं जिनके पास इस ढंग से नहीं पहुंचा जा सकता। उनको वैयक्तिक कोशिश की आवश्यकता है। क्या वे बिना विशेष चेतावनी के नाश हो जाएंगे? प्राचीन समय में तो ऐसा नहीं होता था। परमेश्वर के दास उन ऊंची जगहों में रहने वालों के पास भेजे जाते थे ताकि उनको शांति व विश्राम केवल प्रभु यीशु मसीह में प्राप्त हो सके। स्वर्ग का महाराजाधिराज इस जगत में पतित खोए हुए लोगों को बचाने आया। उसकी कोशिश केवल अछूतों के लिए ही नहीं थी, परंतु कुलीन उच्च श्रेणी के लोगों के लिए भी थी। उच्च श्रेणी के उन मनुष्यों से संपर्क उत्पन्न करने के लिए उसने बड़ी बुद्धिमानी से काम किया, जो परमेश्वर से अनभिज्ञ थे तथा उसकी आज्ञाओं का पालन न करते थे। मसीह के स्वर्गारोहण के पश्चात भी वही कार्य जारी रहा। मेरा हृदय अति कोमल हो जाता है जब मैं उस दिलचस्पी का वृतांत पढ़ती हूं जो प्रभु ने कुरनेलियुस पर प्रकट की। कुरनेलियुस उच्च मर्यादा का पुरुष था, रोमी सेना में अफसर था, परंतु वो उस प्रकाश के अनुकूल जीवन व्यतीत कर रहा था जो उसे मिला था। परमेश्वर ने स्वर्ग से उसको विशेष संदेश भेजा था और दूसरे संदेश द्वारा पत्रस को भी आदेश दिया था कि उससे मुलाकात करे और उसको और अधिक प्रकाश देवे। हमारे काम में इससे बड़ा प्रोत्साहन मिलता है जब हम सोचते हैं कि परमेश्वर उनको प्रेम और करुणा दृष्टि से देखता है, जो प्रकाश की तलाश करते तथा उसके लिए प्रार्थना करते हैं। मुझे बतलाया गया कि बहुत लोग हैं जो कुरनेलियुस की भांति हैं, ऐसे लोग जिन्हें परमेश्वर की इच्छा है कि उसकी कलीसिया में सम्मिलित हों। उनकी सहानुभूति आज्ञा पालन करने वाले लोगों के साथ है, परंतु जो धागे उनको संसार से लपेटे हुए हैं, वे उन्हें दृढ़ता से पकड़े हुए हैं। उनके अंदर साहस नहीं है कि वो नम्र लोगों से हिलमिल सकें। हमें इन लोगों के लिए विशेष परिश्रम करना चाहिए, जिनको दायित्व और प्रलोभन के कारण विशेष मेहनत की जरूरत है। उस प्रकाश के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैं जानती हूं कि संसार के अधिकारियों और प्रभावशाली पुरुषों से साधारण भाषा में ये कहना चाहिए, प्रभु यहोवा यों कहता है। वे भंडारी हैं जिन्हें परमेश्वर ने महत्वपूर्ण धरोहर सौंपी है। यदि वे उसकी बुलाहट को स्वीकार करेंगे तो परमेश्वर उनको अपनी सेवा कार्य में प्रयोग करेगा। कुछ लोग हैं जो विशेष रूप से उच्च श्रेणी के लोगों के लिए काम करने के योग्य हैं। उन्हें प्रतिदिन परमेश्वर को ढूंढना चाहिए और अध्ययन करना चाहिए कि किस रीति से इन लोगों तक पहुंचा जाए, केवल एक सरसरी मुलाकात के लिए नहीं, किंतु व्यक्तिगत परिश्रम और जीवित विश्वास द्वारा उनको पकड़ लेना और उनकी आत्माओं के लिए प्रगाढ़ स्नेह व सच्ची चिंता व्यक्त करना कि उनको परमेश्वर के वचन के अनुसार सत्य का ज्ञान प्राप्त हो जाए। धर्माध्यक्षों तथा मंडली के अधिकारियों से निवेदन।